समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। आज के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो एंड गुड मॉर्निंग देवेंद्र, वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू हियर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो देवेंद्र, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस।
जी, शुरुआत करते हैं। जैसा कि हर दिन हम आज सवेरे कार्यक्रम की शुरुआत न्यूज मैगजीन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सुप्रिया सेनेत के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस बीच भाजपा ने सुप्रिया सेनेत के कथित पोस्ट की कड़ी निंदा की है। भाजपा के राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सेनेत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सेनेत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कंगना रनौत को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर कहा था कि किसी ने उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया था। इस बीच कर्नाटक में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष KRPP पार्टी के नेता जी जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया है। श्री रेड्डी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पत्नी अरुणा लक्ष्मी के साथ फिर से भाजपा में शामिल हुए हैं। जी जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी नेता बीएस येदियुरप्पा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेन्द्र की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वे बिना शर्त भाजपा में शामिल हुए हैं और किसी पद की मांग उन्होंने नहीं की है।
In Telangana, the Bharat Rashtra Samiti (BRS) party officially declared its candidates for all 17 Lok Sabha constituencies for the upcoming Lok Sabha elections 2024. The announcement of Gaddam Srinivas Yadav for the Hyderabad Lok Sabha seat marks the culmination of the candidate selection process. It is understood that BRS President and former Chief Minister Chandrasekhar Rao explored all avenues for social equity in the selection process. The party leaders assert that this strategic selection of candidates with considerable grassroots support would enhance the party's prospects, positioning them favourably against rival parties Congress and Bharatiya Janata Party (BJP). The BRS won 9 Lok Sabha seats in 2019, while 5 sitting MPs of the party recently deserted the party and joined other parties.
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। जम्मू संभाग के 10 जिलों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जा रही है, जिससे तीर्थयात्रियों को घोषित तिथि से अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति मिल सके। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि कुल 112 डॉक्टरों को क्षेत्र भर के स्वास्थ्य केन्द्रों से अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र CHC जारी करने के लिए नामित किया गया है, जो वहां आने वाले यात्रियों के पंजीकरण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अमरनाथ यात्रा की आधिकारिक घोषणा लंबित है, लेकिन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की हालिया बैठक के दौरान चर्चा में 29 जून से यात्रा शुरू करने के संकेत दिए गए हैं।
The Indian Coast Guard (ICG) rescued 5 fishermen from a sinking Indian fishing boat at mid-sea, approximately 50 kilometres from Porbandar yesterday. The ICG's action came in response to an SOS call. ICG ship C-16 quickly arrived in the vicinity of the fishing boat in a short time and launched the rescue and support mission. As the fishing boat was already 75% flooded, it sank 12 kilometres off Porbandar. ICG ship rescued all 5 crew members and medical support was provided to them. Earlier on March 20, the Indian Coast Guard carried out a rescue operation of 8 crew members from a flooded boat after receiving a distress call off the coast of Kundapura in Karnataka.
पाकिस्तान ने लगभग 10 लाख अफगान शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेजने के लिए प्रत्यावर्तन अभियान के दूसरे चरण को शुरू करने की तैयारी की है। सरकार ने जिला अधिकारियों और पुलिस को देशभर में अफगान नागरिकों के ठिकानों का पता लगाने के आदेश दिए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अफगान नागरिक कार्ड ACC धारकों को पता लगाने में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार पाकिस्तान में 20 लाख से अधिक अफगान शरणार्थी हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान में शरण दी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है क्योंकि अमरीका ने अपने पिछले रुख से हटकर इस बार वीटो नहीं किया है। सुरक्षा परिषद ने सभी बंधकों को तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। कई असफल प्रयासों के बाद अक्टूबर में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि परिषद ने युद्ध विराम का आह्वान किया है।
External Affairs Minister Dr. Jayshankar today called on Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. During the meeting, both the leaders exchanged views on the Indo-Pacific and West Asia. In a social media post, Dr. Jayshankar said his positive sentiments on India's relationship have always been a source of strength for our ties. He said India valued the Singapore Prime Minister's perspectives on the current state of the world. Dr. Jayshankar is on a three-day visit to Singapore. Earlier, the External Affairs Minister also met the Foreign Affairs Minister of Singapore, Vivian Balakrishnan. During the meeting, they reviewed the progress of India and Singapore's bilateral cooperation.
आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कल शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 19 ओवर 2 गेंद में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए। और इन प्रमुख समाचारों के बाद अब रुख करते हैं महानगरों का और जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार सुभद्रा से।
यह देवेंद्र, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द शटर्स ऑफ द पुंडी रिजर्वॉयर व्हिच सप्लाइज वाटर टू चेन्नई आर बीइंग रिपेयर्ड। अराउंड 1,838 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर विल बी रिलीज्ड टू कैरी आउट रिपेयर्स टू द शटर्स ऑफ द रिजर्वॉयर। Every day, 300 cubic feet of water per second is being released and drained into the Red Hills Reservoir. The repair work will start when the reservoir reaches its dead storage level by mid-May. Officials are planning to complete the work before the arrival of Krishna water from Kandaleru. Presently, they are covered with sandbags and alternate methods. The Conference on Harmony in Digital Finance and Legal Perspectives was organized jointly by the Department of Research and Development at Savita School of Law and the Indian Academic Researchers Association. The rapid digitalization of finance brought a number of opportunities as well as challenges, underscoring the need for a cohesive regulatory framework that should adapt to the pace of technological change, said fintech experts at the two-day international conference. The digitalization of finance has led to the development of fintech, which empowers finance with technology. However, there are limited laws relating to financial aspects, and there is a need to address fraud and scams. There is a huge avenue to explore legal talent in digital finance. Getting to some Bengaluru now, news now. To improve voter turnout in Bengaluru, the election officer and chief commissioner of Buhat Bengaluru Mahanagara Palike, Tushar Girinath, held a discussion yesterday with the Resident Welfare Association's representatives. He called upon them to motivate their residents to exercise their voting rights during the Lok Sabha election. The interaction in virtual mode dwelt upon the process to make election a success by large-scale voting. There are 4 Lok Sabha constituencies spread across 28 assembly seats in Bengaluru. Tushar Girinath offered all the assistance and information for the convenience of the electorate. He appealed to them to convince the voters the importance of electoral participation. He asked them to furnish details of PWD and senior voters above the age of 85 so that postal ballots could be organized for them. He also informed that all basic essential facilities will be provided at the polling booths. There will be toilets, drinking water, sitting places, wheelchairs and ramps at the booths, and the queue system will be systematic. Moving to Hyderabad now, heritage activists and Daily Morning Walkers expressed concern on the damage to the colour of the archaeological museum building in public gardens. The activists contest the decolouring of the heritage building is due to burning of trash or waste regularly. They have pointed out that Greater Hyderabad Municipal Corporation does not regularly collect garbage. Consequently, museum staff resort to burning the waste, disregarding the harm it causes to the building. Apart from damaging the building's colour, this practice inconveniences walkers who seek fresh air during their early morning walks, as they are forced to inhale smoke instead. Dr. Saxena, a regular morning walker, said the walkers in the famous garden raise the issue of burning trash regularly with the concerned department, but unfortunately there has been no response. And Devendra, over to you now for the rest of the news.
Jee. दिल्ली से शुरुआत करते हैं दिल्ली मुंबई और कोलकाता के समाचारों की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल पंडित पंत मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया भी उपस्थित थे। भाजपा कार्यालय में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। राजधानी के नरेला इलाके में स्थित वेयर हाउस और गोदाम में कल सुबह भीषण आग लग गई। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं। आग के कारण करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग के अनुसार काफी मशक्कत के बाद शाम 4 बजे के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम को सुबह 6 बजे आग लगने की सूचना मिली। आग इतनी भयानक थी कि घटनास्थल पर दमकल की 64 गाड़ियों को लगाया गया। श्री गर्ग ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। राजधानी के पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में होली समारोह के दौरान हाई टेंशन तार से बिजली का झटका लगने से 6 लोग घायल हो गए। एक महिला समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। और मुंबई का रुख करें तो राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सोमवार को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सियरा लियोन की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 19.79 करोड़ रुपए की मूल्य की 1979 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि केन्या की राजधानी नैरोबी से मुंबई आई इस महिला को एक गुप्त सूचना पर रविवार को हिरासत में लिया गया था। अधिकारी ने कहा कि सूचना के आधार पर उसके सामानों की जांच की गई, जिससे उन्हें कोकीन बरामद हुआ। DRI अधिकारी ने कहा कि जब पाउडर को पकड़ने वाली टीम के साथ फील्ड किट का उपयोग करके परीक्षण किया गया तो ये कोकीन पाया गया। उन्होंने कहा कि टीम ने अवैध बाजार से 19.79 करोड़ रुपए मूल्य की 1979 ग्राम कोकीन जब्त की। अधिकारी ने बताया कि महिला यात्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तस्करी नेटवर्क की आगे की जांच जारी है। नवी मुंबई की वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से नवी मुंबई के पर्यावरणविदों ने नगर निगम आयुक्त डॉ कैलाश सिंधे से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि शहर के हरित क्षेत्र को कोई नुकसान न पहुंचे और इसे संरक्षित किया जाए। हाल ही में शहर और औद्योगिक विकास निगम सिडको से नवी मुंबई नगर निगम NMMC में नागरिक निकाय के आयुक्त के रूप में स्थानांतरित हुए शिंदे ने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन बताया कि वो शहर के सामने आने वाले मुद्दों से परिचित हैं। पर्यावरणविद ने उन्हें सिडको के कड़े विरोध के बीच फ्लेमिंगो स्थलों अर्थात आर्द्रभूमि के संरक्षण के NMMC के पूर्व वादे की याद दिलाई। NMMC को सिडको से सभी शेष खुले स्थानों को लेना चाहिए और उन्हें हरित क्षेत्रों में विकसित करना चाहिए। कार्यकर्ता ने कहा कि नागरिक प्रमुख से आग्रह किया गया है कि वे NMMC के लिए भूखंड को बरकरार रखने के लिए सिडको और राज्य सरकार से आग्रह करेंगे। खुली जगहों के संबंध में एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने बताया कि 232 उद्यानों और 91 खेल के मैदानों के बावजूद NMMC क्षेत्र में खुली जगह दयनीय स्थिति में है। और कोलकाता का रुख करते हैं। कोलकाता में कल दोपहर मां फ्लाईओवर पर एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। 23 वर्षीय सैकत मलिक फ्लाईओवर की साइड वॉल से टकरा गया। पुलिस ने जानकारी दी है कि उसने हेलमेट नहीं पहना था। दुर्घटना के बाद पीड़ित को शहर स्थित चितरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सैकत मलिक कोलकाता के लेदर कॉम्प्लेक्स थाना क्षेत्र का रहने वाला था। महानगरों की खबरों के बाद अब बात करते हैं महानगरों के मौसम की। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में आज फिर से बादल छाने की संभावना है। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है और मौसम भी शुष्क रहेगा। यहां पर न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। और कोलकाता में आंशिक बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ कहीं कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और सुभद्रा, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई. Minimum temperature is 25 degrees Celsius, maximum will be around 34. Bengaluru is also expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature is 21 degrees Celsius, maximum will be around 35. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 25 and maximum of 38 degrees Celsius.
जी, और अब इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। आज 26 मार्च है। आज के दिन वर्ष 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया था।
If not for renowned English writer-printer William Caxton, most people in the world, friends, would have never got to experience the enchanting Aesop's Fables. Translated version of the same appeared this day in 1484. And on March 1859, new planet was seen. It was spotted by Edmond Lescarbault, a French medical doctor and amateur astronomer. He reported sighting a new planet in an orbit inside that of a Mercury. He named it Vulcan.
जी और तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन वर्ष 1972 में 26 मार्च के दिन ही किया था। वर्ष 1973 में गूगल के सह संस्थापक और कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी पेज का जन्म हुआ था और इसी वर्ष में इसी दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में महिलाओं को भर्ती करने की प्रक्रिया की शुरूआत हुई थी।
ग्रेट ब्रिटेन स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड इन जर्नलिज्म ऑन दिस डे इन 1780 एंड सून आफ्टर सेवरल नेशंस फॉलोड सूट। द ब्रिटिश गैजेट एंड संडे मॉनिटर वाज लॉन्च्ड ऑन दिस डेट। इट केम टू बी नोन एज इंग्लैंड्स फर्स्ट संडे न्यूज़पेपर एंड 1923 द बीबीसी बिगन इट्स रेडियो daily radio weather forecast. And friends, you know, most people would have second thoughts about hitting the roads without a driving license these days, and one is supposed to clear the driving test to gain access to this document. And do you know when this rule was enforced in the United Kingdom? The idea of a driving test was introduced on March 26, 1934. And also a path-breaking invention by a medic named Dr. Jonas Salk was announced this day in 1953, which was a huge sigh of relief for many across the world. On a radio show, Salk told the public that he had found a vaccine that can cause the dreaded polio epidemic. And 1970, the Woodstock movie premieres in Hollywood. And of course, we have a brave lady from Uttarakhand called Goira Devi. She saved several trees this day in the year 1974 in Reni village, where local loggers got in to chop off the trees. She, along with 27 women, protected the trees by hugging the trees despite the abuse of armed loggers. After this incident, the Uttar Pradesh government formed a committee of experts who stated that the Reni forest was an ecologically sensitive area and that no trees should be felled there. This was also the birth of Chipko movement to care about our forests and trees to protect them.
जी, जैविक हथियार संधि अस्तित्व में आज ही के दिन वर्ष 1975 में आई थी और अमेरिका में मिस्र इजराइल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे वर्ष 1979 में आज ही के दिन।
1979, the Camp David Accord ended 30 years of warfare between Israel and Egypt. Prime Minister Menachem Begin of Israel and Egyptian President Anwar Sadat signed the Treaty of Mutual Recognition and Peace, mediated by former American President Jimmy Carter. And friends, 2000, at the 72nd Annual Academy Awards held in Los Angeles on this day, that is March 26th, Phil Collins won an Oscar for Best Original Song with You'll Be in My Heart, which featured in the Disney animated movie Tarzan.
जी और अब इतिहास के बाद आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है और जिन्होंने अपने कार्यों विचारों से समाज को प्रेरित और प्रभावित किया। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा को जिनकी आज जयंती है। महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। महादेवी वर्मा ने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता और मधुरता से संसिक्त कर सहज मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार खोला। विरह को दीपशिखा का गौरव दिया, वृष्टिमूलक मानवतावादी काव्य के चिंतन को प्रतिस्थापित किया। महादेवी वर्मा के गीतों का नाद सौंदर्य, पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। महादेवी वर्मा ने वर्ष 1919 में इलाहाबाद में क्रॉस्टविट कॉलेज में शिक्षा प्रारंभ करते हुए वर्ष 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। तब तक उनके दो काव्य संकलन निहार और रश्मि प्रकाशित होकर चर्चा में आ चुके थे और महादेवी वर्मा ने अपने प्रयत्नों से इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। महादेवी वर्मा पाठशाला में हिंदी अध्यापक से प्रभावित होकर ब्रजभाषा में समस्या पूर्ति भी करने लगे। फिर तत्कालीन खड़ी बोली की कविता से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रोला और हरिगीतिका छंदों में काव्य लिखना उन्होंने प्रारंभ किया। उसी समय माँ से सुनी एक करुण कथा को लेकर 100 छंदों में खंड काव्य भी लिख डाला। 1932 में उन्होंने महिला की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला और प्रयाग में अध्यापन कार्य से जुड़ने के बाद हिंदी के प्रति गहरा अनुराग रखने के कारण महादेवी वर्मा दिनों दिन साहित्यिक क्रियाकलापों से जुड़ती चली गईं। महादेवी वर्मा जी कवियत्री होने के साथ साथ एक विशिष्ट गद्यकार भी थीं। यामा में उनके प्रथम 4 काव्य संग्रहों की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ। आधुनिक कवि महादेवी में उनके समस्त काव्य से उन्हीं द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित हैं। कवि के अतिरिक्त वे गद्य लेखिका के रूप में भी पर्याप्त ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में और अतीत के चलचित्र 1941 में उनकी संस्मरणात्मक गद्य रचनाओं के संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियां 1942 में सामाजिक समस्याओं विशेषकर अभिशप्त नारी जीवन के जलते प्रश्नों के संबंध में लिखे उनके विचारात्मक निबंध संकलित हैं। रचनात्मक गद्य के अतिरिक्त महादेवी का विवेचनात्मक गद्य में तथा दीपशिखा, यामा और आधुनिक कवि महादेवी की भूमिकाओं में उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा का भी पूर्ण प्रस्फुटन हुआ है। उनकी कविता की पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कंजल अश्वों में रिमझिमा ले ये घिराघन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरणहारे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला।
Over to another poet now. American poet Robert Lee Frost was born this day in 1874. Highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech, Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. Frost was honored frequently during his lifetime, receiving 4 Pulitzer Prizes for his poetry. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. Also, today is the death anniversary of Noel Coward, English playwright, actor and composer, best known for highly polished comedies and manners. And friends, tributes to a giant of European classical music, German composer Ludwig von Beethoven, famous for his 9 symphonies, piano concertos, piano sonatas, string quartets. This great musical master passed away this day in the year 1827 at the age of 56. Beethoven's Symphony No. 5 is one of the most frequently performed symphonies, one of the best known compositions in classical music. Let's have a listen. Tributes to South Indian actress Sukumari, who acted in Malayalam and Tamil movies. In 2003, she was awarded the Padma Shri by the Government of India for her contributions towards the art. She won the National Film Award for Best Supporting Actress for her role in Tamil film Namma Gramam in 2010. Sukumari passed away this day in 2013.
Sitar vadak, geetkar aur sangeetkar Anand Shankar ki bhi aaj punyatithi hai. Anand Shankar ki ek aur pehchan aapko bata dein, wo vishwa prasiddh sitar vadak Pandit Ravi Shankar ke bhatije the. Unhone apne jeevan kaal mein purvi sangeet shaili mein pashchimi sangeet ka उत्कृष्ट फ्यूजन कर संगीत को एक नया रूप दिया। 1990 के दशक के मध्य जब डीजे की संस्कृति का प्रचलन शुरू हुआ तो आनंद शंकर ने भी डिस्को के अनुरूप संगीत का निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने वर्ष 1996 में ब्लू नोट्स के अंतर्गत ब्लू जूस वॉल्यूम 1 और इस नाम से एक एल्बम का निर्माण किया। इसके 2 संस्करण लॉन्च हुए थे, स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम्स। आइए सुनते हैं उनका ये संगीत।
birthday of Steven Tyler, singer-songwriter, founder, member, lead singer of the American rock band Aerosmith. Born in New York on this day, 1948, Steven had music in his life from early age, as his father was an accomplished, classically trained pianist and musician. Now, what do we say about his band Aerosmith that Tyler formed in 1970? Often referred to as the greatest American rock and roll band, indeed the best-selling American rock band of all time, Tyler and his boys have been providing our ears with bluesy, rootsy music with excellent riffs ever since.
There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his.
Birthday of songstress, songbird who led a girl group called the Supremes, turned it into one of the world's best-selling girl groups of all time. That's our Lady Diana Ross. Happy birthday to her.
Do you get what you're hoping for when you look in my eyes? You dare to know open doors. What am I hoping for? Do you know once we were standing still?
प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कटिंगेरी कृष्णा हेब्बार की भी आज पुण्यतिथि है। के हेब्बार अधिकांशतः भारत के विश्व कलाकृति ही बनाए करते थे। भारत सरकार से उन्हें वर्ष 1961 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। के हेब्बार का जन्म 15 जून सन 1911 को उडुपी के नजदीक कटिंगेरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका रुझान कला की ओर था, क्योंकि उनके पिता सामयिक मूर्तिकार थे जो गणेश की मूर्तियां बनाते थे। और आज जानी मानी अभिनेत्री मधु का जन्मदिन है। इन्हें सबसे पहले निर्देशक वीरू देवगन ने अपने बेटे अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे के लिए चुना था, जिसे 1991 में प्रदर्शित होना था, लेकिन इनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई फूल और कांटे के पहले, और ये थी बालचंद्र की अजगन 1991 में। और इनकी फिल्म फूल और कांटे सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इनकी फिल्म रोजा भी एक सुपरहिट फिल्म है। मधु मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी की ममेरी बहन भी है, और रोजा फिल्म का ये गाना हम आपको सुनाते हैं।
And friends, country singer from Tennessee, United States, Kenny Chesney turns a year older today. He's contemplated ballads and hardcore party songs, on-stage energy, sophisticated concert productions made him one of the most popular performers in the country music world. A tune to celebrate his birthday.
Beat up some more cars, bangles and guitars, burned up a lot of miles. Let me some reasons, some pretty reasons, stick around for a while. But if you know me, you know I'll be. Long gone, still going, what turtle wheels say?
और इसके साथ ही न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी के साथ।
कमिंग अप नाउ समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन, फॉलो द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।